संख्या 90 अध्याय 7 कवि सूरदास की बहिरंग परीक्षा। एक, आधुनिक और मध्य युग का साहित्य। एक बार हम भक्त सूरदास को जहाँ का तहाँ छोड़ देना चाहते हैं, केवल कवि सूरदास की चर्चा सो भी बहिरंग की चर्चा अनुचित जरूर है, पर इस 20वीं शताब्दी के लेखक को इस अनुचित्य की सीमा के भीतर प्रवेश करना आवश्यक हो गया है। सूर साहित्य की बहिरंग परीक्षा में ही इस अनुचित प्रवेश के कारण पर प्रकाश पड़ेगा। एक युग था जब साहित्य की रचना ऊंचे आदर्श पर की जाती थी। काव्य हो या नाटक, उसका नायक प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान हुआ करता था। उसके वर्ण विषय का यह आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था कि वह मनुष्य के किसी स्थायी भाव, रति, उत्साह आदि को जागृत करे। पर आज वह युग नहीं रह गया है। आज शिक्षा का विस्तार हुआ है, जीवन की समस्याएं शतमुखी होकर परिदृष्ट हुई है। पृष्ठ संख्या 91। साहित्य सस्ता हो गया है, साहित्यकार चंचल। उस युग का कवि एक ऊंचे आदर्श की कल्पना करता था और पाठक के चित्त को अपनी इंद्रजाली भाषा के द्वारा ऊपर उठाता था। वह उसी ऊपर की कल्पना लोक में मानव चित्त की सारी अनुभूतियां प्रतिफलित करता था, जिसका फल यह होता था कि सहृदय का चित्त उससे आनंद तो ले सकता था, पर नाना समस्याओं के बोझ से क्लांत नहीं हो उठता था। कालिदास के मेघदूत में ऐसी कोई बात नहीं है जो साधारण विरही नित्य प्रति अनुभव न करता हो, परंतु फिर भी उसमें एक ऐसा गुण है जो सहस्त्राधिक वर्ष से मनुष्य के चित्त को उद्भ्रांत किए है। यह गुण है उसका नित्य जीवन के ऊपर की कल्पना लोक में अवस्थान। अति प्रकृति यक्ष के मुंह से मेघों के द्वारा जो संदेशा अलकापुरी में ब्रैकेट में जहाँ चीर यौवन नित्य वर्तमान रहता है ब्रैकेट बंद भेजा गया है, वह संपूर्ण भाव जगत की चीज हो गई है। आज इतना ऊंचा जाना बेकार समझा जाता है। हमारे सामने ही नाना भांति की समस्याएं पड़ी हुई है जो प्रेम और विरह को नाना भाव से विचित्र बना सकती है, तो हम दूर क्यों जाएं? एक अशिक्षित मजदूर की विरह कथा क्या किसी यक्ष की विरह कथा से कम महत्व रखती है? और फिर प्रेम और विरह की वही एक घृष्ट पुरानी बातें बार बार दोहराने की क्या आवश्यकता ही है? मनुष्य की अंतर्वृत्ति आज की भौतिक समस्या की जटिलता के कारण नाना समस्याओं की क्रीड़ा भूमि हो गई है। मजदूरों और पूंजीपतियों के नाना मनोभाव इससे पहले इस रूप में दृष्टिगोचर नहीं हुए थे। स्त्री और पति के प्रेम में वह पुरानी एक रास्ता अब नहीं रह गई है, उसकी भी नाना दिशाएं हैं, नाना समस्याएं हैं। फिर इन बातों को साहित्य में क्यों ना स्थान दिया जाए? आज स्त्री और पुरुष में प्रतिद्वंद्विता है, स्वामी और भृत्य में प्रतिद्वंद्विता है, शासक और शासित में प्रतिद्वंद्विता है, न्यायाधीश और अपराधी में प्रतिद्वंद्विता है, साधु और चोर में प्रतिद्वंद्विता है। संसार प्रतिद्वंदियों का अखाड़ा हो गया है। साहित्य इन समस्याओं को कैसे भुला दे? ठीक ही है, साहित्य जिस वेग से उन्नत हो रहा है उसे देखते हुए यह आशा करना व्यर्थ है कि वह मध्य युग के या आदि युग के परिकल्पित आदर्शों की संकीर्ण सीमा में बैठा रहेगा। वस्तुतः आज यही हो रहा है। संसार के किसी भी बड़े कवि या नाटककार की रचना को पढ़ जाइए, उसमें एक ही प्रयत्न नाना रूपों में चित्रित मिलेगा, वर्तमान समस्याओं का समाधान। परंतु ये वर्तमान समस्याएं हैं क्या? एक शब्द में कहना हो तो कहेंगे अप्रेम। जिस साहित्य की नींव अप्रेम पर हो वह ऊंचा हो सकता है, गंभीर तत्वपूर्ण भी हो सकता है, पर स्थायी नहीं होगा। मध्य युग के भक्त कवियों में इस प्रकार की समस्याओं के समाधान की कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। समस्याएं भी इतनी अधिक नहीं है, परंतु वह एक सुदृढ़ नींव पर स्थापित है। यह सुदृढ़ नींव है प्रेम। ऊपर की बात हम जितनी जल्दी कह गए हैं शायद उतनी ही जल्दी में कहना अनुचित हुआ है। क्या सचमुच मध्य युग के सामने कोई समस्या नहीं थी? इसी अध्ययन के पिछले अध्यायों का हवाला देकर बताया जा सकता है कि उस समय भी समाज को एक विकट समस्या का समाधान करना पड़ रहा था। सूरदास आदि भक्तों ने अपने ढंग से उसके समाधान का प्रयत्न भी किया था। और फिर हमसे पूछा जा सकता है, आज के इस विराट साहित्यिक प्रयत्न में क्या सचमुच कोई स्थायित्व का चिन्ह नहीं है? क्या सचमुच फील्डिंग स्मोलेट, बालजाक, दोदे, जोला, अनातोले, फ्रांस गेटे, तुर्गेनेव, टॉल्स्टॉय, बर्नार्ड शॉ, गॉल्सवर्दी, मेटरलिंग, रविंद्रनाथ और और प्रेमचंद एक अस्थिर साहित्य की सृष्टि कर रहे हैं या कर गए हैं। इन बड़े बड़े साहित्य महारथियों में अनेक के ग्रंथ रत्नों को मौलिक या अनुदित रूप में देखने का सौभाग्य इन पंक्तियों के लेखक को नहीं प्राप्त हुआ। जो कुछ देखा है या देखने वालों के मुँह से सुना है वह निश्चय ही अपूर्व है। कितने ही साहित्यिकों के ग्रंथ रत्नों को निश्चय ही यह कृतज्ञ संसार चिरकाल रक्षित रखेगा। फिर सूरदास आदि मध्य युग के कवियों और इन आधुनिक साहित्यिकों में भेद क्या रहा? सूरदास भी अपने युग की समस्याओं का समाधान कर गए हैं। मेटरलिंक या गाल्स वर्दी भी वही कर रहे हैं या कर गए हैं। सूरदास के युग में भी कितने ही कवि ऐसे हो गए हैं जो संसार में नाम शेष होकर भी नहीं रह सके, और इस युग में ऐसे कवि रत्न है जो चिरकाल के लिए अपनी कीर्ति छोड़ जाएंगे। फिर कौन सी ऐसी विभाजक रेखा है जो मध्य युग के कवियों की विशेषता का निर्देश करेगी? पृष्ठ संख्या 92। सच पूछिए तो भेद है, और इसी भेद के अनुसंधान के लिए हम सूरदास को केवल कवि के रूप में देखना चाहते हैं। वह भेद है आकृति और प्रकृति का, भाषा और भाव का, रूप और रस का, शरीर और आत्मा का। आधुनिक साहित्य निर्माता के ग्रंथ में बिना किसी अपवाद के आप एक गुण पाएंगे। पन्ने के बाद पन्ना पढ़ते जाइए, आपका मस्तिष्क नहीं उबेगा। प्रत्येक पन्ने में कुछ ज्ञान विज्ञान की, कुछ तत्व अतत्व की बातें इस सुंदरता के साथ लिखी मिलेंगी कि आप मंत्रमुग्ध की भांति आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी ओर मध्य युग के या आदि युग के किसी महाकाव्य को लीजिए, उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण। जगह जगह पर फीके श्लोक नहीं मिलेंगे, अध्याय का अध्याय अनावश्यक बोझ सा जान पड़ेगा। फिर भी उस युग के महाकाव्य में सब मिलाकर कुछ मिलेगा, परंतु इस युग का ग्रंथ समाप्त होने के बाद आपको जहाँ का तहाँ छोड़ देगा। उस युग का काव्य महानद के समान है, उसके 10-20-50 तरंग निरर्थक या शिथिल भी हो तो कोई हर्ज नहीं। बीच बीच में शैवाल पुंज के कारण अविल तक भी आ गई हो तो कुछ बात नहीं, अंत में वह रस के महासमुद्र की ओर ले जाएगा ही। दूसरी ओर इस युग के काव्य का प्रत्येक पन्ना एक एक मणि है, एक के बाद दूसरे रत्न की आभा पर मुग्ध होते जाइए, परंतु यहीं तक, इसके आगे नहीं। वर्तमान युग का समस्या नाटक आपकी आँख में उंगली घुसेड़ कर कानून की दुर्बलता, न्याय की अन्याय परायणता, प्रेम की अप्रियता, विवाह की विच्छिन्नता, धर्म की अधार्मिकता, घृणा का प्रेम दिखा देगा, और बस आप जिस दुनिया में हैं वह दुनिया और भी नग्न होकर आपके सामने आएगी। पृष्ठ संख्या 93। मध्य युग का कवि भी कम वेशी दुनिया को उसके वास्तविक रूप में दिखाएगा। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास सबने दुनिया के उस मायावी अंग की ओर अंगुली निर्देश किया है, परंतु उस युग की कविता में हम केवल कविता की बात कह रहे हैं, भक्ति भरे पदों की नहीं। यह समस्या नितांत गौण स्थान अधिकार करती है, वही मुख्य होकर नहीं आती। आप अगर न भी जाने कि किन सांसारिक अड़चनों की ओर इशारा किया गया है तो भी रस बोध में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। परंतु आज का कोई नाटक या काव्य या उपन्यास जिसमें आधुनिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, पढ़िए, आप निरंतर सोचते रहेंगे, वाकई हम लोग इस प्रकार की पेचीदी जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारा ध्यान भी कभी इधर नहीं जाता। देखना है कि इसका कारण क्या है, क्यों मध्य युग का कवि अपने पारिपार्श्विक जगत से इतना ऊंचा उठ जाता है। सूरदास को लेकर ही अध्ययन आरंभ किया जाए। इस प्रश्न के उठते ही सबसे पहली बात जो आंखों के सामने आती है वह है साहित्य के आकार की। इस युग का साहित्यिक साहित्य को एक विशुद्ध आधुनिक वेश में सजाता है। इसकी भूमिका पाठक की कल्पना भूमि के साथ एक ही तल में रहेगी। जितनी ही यह उस तल में रहेगी इस साहित्य के लिए उतनी ही अधिक सुविधा होगी। परंतु मध्य युग का कवि अपनी भूमिका पाठक की भूमिका से कहीं ऊंची अवश्य ही समानांतर रखेगा। असीम और निरपेक्ष कृष्ण के साथ ससीम और सापेक्ष गोपियों की प्रेम लीला ऊपर से कितनी ही मोहक हो है एक अतुलनीय ट्रेजेडी। उस विरह का कोई कूल किनारा नहीं, कोई हदो हिसाब नहीं। वैष्णव कवि अपने साहित्यिक आकार के लिए इस सनातन कथा को चुनेगा और फिर संसार का सारा हाव भाव लीला विभ्रम इस महासागर में लीन कर देगा। उद्धव संवाद के बहाने सूर सागर की स्थिर गंभीर वारी राशि में संसार की सारी व्याकुलता और सारी विरह वेदना प्रतिबिंबित हुई है। गोपियों की प्रेम लीला मर्त्यलोक के मनुष्य की पहुंच से कितनी ही ऊंची क्यों न हो है उसके समानांतर। इस आकार निर्वचन में वैष्णव कवि की समता संसार के शायद ही कुछ कवि कर सके। यही मध्य युग का कवि आधुनिक युग के कवि से अलग हो जाता है। साहित्य सृष्टि की मूल शक्ति का नाम संश्लेषणी है, विश्लेषणी नहीं। स्थाई साहित्य की रचना के लिए आवश्यक है एक अत्यंत दृढ़ समुन्नत भूमि। वह एक तरफ जहाँ मानव चित्र के अति निकट नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उसमें सामयिकता की ऐसी निकटता भी नहीं होनी चाहिए जो चित्त को तदत्त समस्याओं में उलझा दे। वर्तमान साहित्य इस रास्ते पर नहीं चल रहा है, उसमें विश्लेष की प्रधानता है। पृष्ठ संख्या 94, संश्लेष या संघात की नहीं, वह किसी दृढ़ समुन्नत भित्ति पर अवस्थित नहीं है। अथच उसमें सामयिकता की मात्रा पर्याप्त है। इस दृष्टि से जहाँ मध्य युग का साहित्य आकार में इससे भेद करता है, वहाँ प्रकार में भी। इस युग के साहित्य में विश्लेष इतने वेग से दिखाई नहीं पड़ा। यह ठीक है कि आदि युग के काव्य की अपेक्षा मध्य युग का काव्य अधिक विश्लेष प्रवण है, पर उतना तो एकदम नहीं जितना आज का। सूर सागर के प्रत्येक पद को उसी में स्वतंत्र समझा जा सकता है, तथापि सारा सूर सागर सागर है। उसकी एक एक तरंग जिस प्रकार विश्लिष्ट भाव से पूर्ण है, उसी तरह संश्लिष्ट भाव से भी। सूरदास की यह विशेषता है कि वे विश्लेष में भी अनुपम है, संघात में भी। इसके बाद ही मध्य युग और वर्तमान युग की विभाजक दूसरी रेखा दिखाई पड़ती है, वह है भाषा और भाव की। अधुनातन साहित्य वस्तुवाद का पुजारी है, वह सब ओर से नेचुरल या रियल, स्वाभाविक या वास्तव होना चाहता है। और क्षेत्रों में नाना क्षेत्रों का विवाद रह सकता है, पर भाषा और भाव में वह निश्चय ही रियल होगा। एक मजदूर की बातों में वह केवल मजदूर की प्रकृति, पहुंच और रचना भर को ही ध्यान में नहीं रखेगा, उसका उच्चारण, उसकी व्याकरण संबंधी गलतियों और मुहावरों की भूल भी ज्यों की त्यों रख देगा। मध्य युग के संस्कृत नाटकों में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ी थी, पर वह एक सीमा तक आकर रुक गई। आज का साहित्य रुकने का नाम नहीं जानता, उसे केवल आगे बढ़ना मालूम है, निरंतर आगे बढ़ना। संस्कृत भाषा का एक शब्द है भाव, अर्थ है दैट, वाट इज जो है, यही दैट वाट इज आज के साहित्य की प्रधान बात है। परंतु भाव कहाँ का प्रश्न चिन्ह। भारतीय पंडितों का कहना है भीतर का सिंगल कॉमा क्लोज, ऊपरी आवरण चाहे जैसा हो, देखो उससे भीतर की वह चीज स्पष्ट हुई या नहीं जो है वाट इज। गोपियों की भाषा गोपियों के अनुरूप है या नहीं, इससे कुछ आता जाता नहीं। योग मार्ग के उपदेशक उद्धव की भाषा में दार्शनिक गंभीरता है या नहीं, इस चिंता की आवश्यकता नहीं। केवल देखो उन्होंने हृदय के जिस भाव ब्रैकेट में जो है को छूना चाहा था, उसे छू पाया है या नहीं। अगर छू पाया है, काम हो चुका। भाव अनूठो चाहिए, भाषा को होए। सूरदास की भाषा का लक्ष्य उसी भाव को छूना है। वह अलंकारिक भी है, सादी भी है, चित्रमय भी है, पर है सर्वत्र भाव की अनुगामिनी। वह रियल और अनरियल से बहुत ऊपर है। 100 बात की एक बात यह कि मध्य युग की कविता रूप और रस को अपने अपने स्थान पर अच्छी तरह सजाती है। रस की सृष्टि करते समय वह रूप को अग्रसर नहीं कर देती, और रूप की रचना के समय वह उसे नीरस नहीं होने देती। उसका रूप रस का आश्रय है, रस रूप का पूरक। इतना सुन लेने के बाद हमारे पाठक शायद हमको यह अधिकार देंगे कि हम मध्य युग की कविता की आत्मा की ओर इशारा करें। पृष्ठ संख्या 95, यह आत्मा है प्रेम। 20वीं शताब्दी की प्रतिद्वंदिता की समस्या 150 वर्ष में या तो लुप्त हो जाएगी या दूसरा रूप धारण कर लेगी, पर श्री कृष्ण और राधिका की सुदृढ़ समुन्नत भूमि पर प्रतिष्ठित ये प्रेम और विरह के गान अनंत काल तक यों ही बने रहेंगे। न इनमें जीर्णता आएगी न मृत्यु, इनकी आत्मा है जो सत्वोद्रेका खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित प्रमात्रिभि स्वाकार वद भिन्नत्वेन अयमा स्वादते रसः। 2, सूरदास का साहित्य उनकी जीवनी और प्रभाव। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में एक फ्रेंच पंडित ने सूरदास के कुछ भजनों का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। ये भजन उसने किसी ग्रामीण भिखारी के मुंह से सुने थे। इसके बाद 50 साल तक यूरोप में किसी ने इनके पदों का कुछ परिचय प्राप्त किया या नहीं मालूम। उस समय के कुछ अनाधिकारी पादरियों ने कृष्णायत संप्रदायों और कृष्ण भक्तों के विरुद्ध एक विषैला वातावरण तैयार कर रखा था। पी जियोग्री नामक एक ऐसे ही पादरी ने प्रचार किया था कि कृष्ण वस्तुतः प्रभु क्राइस्ट का नामांतर है, जिसे अति दुष्ट वंचकों हिंदुओं ने बड़ी धूर्तता और नीचता के साथ इस पवित्र चरित्र को गंदला कर दिया है। ब्रैकेट में कनिंगली एंड इम्प्यूजली पॉल्यूटेड बाई मोस्ट विग्ड इम्पोस्टर्स ब्रैकेट बंद। जहाँ इस प्रकार का विकृत वायु वायुमंडल हो वहाँ से कुछ आशा करना व्यर्थ है। परंतु यह अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रही। एफ एस ग्राउज नामक प्रसिद्ध पंडित ने सन 1883 में 84 वैष्णव की वार्ता का कुछ अंश अंग्रेजी में अनुदित किया। इससे यूरोप के पंडितों का ध्यान सूर साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। विल्सन की प्रसिद्ध पुस्तक द रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ द हिंदू में भी कुछ अंश अनुदित होकर प्रकाशित हुआ था। परंतु सूरदास का वास्तविक परिचय कराया हिंदी साहित्य के अति परिचित पंडित ग्रियर्सन ने। सन 1889 में कलकत्ता से इनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ब्रैकेट में हिंदुस्तान की वर्तमान देशी भाषाओं का साहित्य प्रकाशित हुई ब्रैकेट बंद। उसी साल के जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में आपने हिंदी कवियों की एक नामावली भी प्रकाशित कराई। सन 1907 के एक लेख में ग्रियर्सन साहब ने अपनी पुस्तक की तारीखों की अप्रामाणिकता स्वीकार की ब्रैकेट में द डेट्स इन दिस आर फ्रिक्वेंटली टेकन फ्रॉम द नेटिव सोर्स एंड आर नॉट ऑलवेज टू बी रिलाइड अपॉन ब्रैकेट बंद। यूरोप के पंडितों ने इस भक्त कवि की महिमा को हृदयंगम किया हो या नहीं, भारतवर्ष के पंडितों ने बहुत पुराने जमाने से अपना हृदय खोलकर इनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की है। पृष्ठ संख्या 96। पुराने जमाने की 84 वैष्णवों की वार्ता भक्तमाल आदि पुस्तकों से लेकर इस युग के नाना पंडितों की आलोचनाओं में इस महाकवि के प्रति असंकोच आदर भाव प्रदर्शित किया गया है। इस युग में सूरदास के प्रति जो श्रद्धांजलि दी गई, उसमें सर्वश्रेष्ठ और शायद सर्वप्रथम भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद अन्य अनेक पंडितों ने इस साहित्य का रसास्वादन किया और कराया है। साहित्य की छानबीन भी हुई है और फलस्वरूप सूरदास की वास्तविक जीवनी और उनकी लिखी पुस्तकों की वास्तविक तालिका भी तैयार करने की कोशिश की गई है। पता चला है कि उसके बनाए ग्रंथों के नाम है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भागवत दशम स्कंद की टीका, व्याहलो और नल दमयंती। सूर सारावली सूर सागर का ही संक्षिप्त संस्करण है। साहित्य लहरी उनके दृष्टिकूटों में कुछ और जोड़कर रची गई है। नागलीला और पद संग्रह सूर सागर के ही भाग है। अंतिम तीन ग्रंथों ब्रैकेट में टीका, व्याहलो और नल दमयंती ब्रैकेट बंद के बारे में पंडितों को संदेह है कि ये सूरदास के रचित हैं या नहीं, अर्थात सूर सागर ही उनका ग्रंथ है। वास्तविक जीवनी प्रश्न चिन्ह। पंडितों ने अथक परिश्रम के बाद उनकी निकटतम वास्तविक जीवनी खोज निकाली है और वास्तविक ग्रंथ तालिका प्रश्न चिन्ह वह भी तैयार कर ली गई है। कहा जाता है सूर सागर में 125,000 पद हैं, पर पंडितों ने देखा है कि 10,000 भी नहीं है। कहा जाता है सूरदास ने अपनी प्रेमिका से आंखें फुड़वा ली थी। पंडित मंडली को इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। कहा जाता है सूरदास को भगवान ने कुएं में से निकाला था। पंडित लोग इन बच्चों की सी बातों पर हंस कर रह गए हैं और फिर भी वास्तविक जीवनी तैयार है। पंडित मंडली मुझे क्षमा करें, मैं उसके परिश्रम और उसकी ईमानदारी का आदर करता हूँ। सूरदास की वास्तविक जीवनी वह नहीं है जो ऐतिहासिक प्रमाणों के बल पर तैयार की गई है। उनका वास्तविक साहित्य वह नहीं है जो पुरानी कीट क्लिष्ट पोथियों में लिखा गया है। कोटि कोटि भारतवासी के हृदय पर वह साहित्य लिखा हुआ है, वही उनका वास्तविक साहित्य है। उसमें सचमुच 125,000 पद हैं, 125,000 असंख्य, और उनकी वास्तविक जीवनी इस प्रकार है। उस दिन यमुना के किनारे अचानक एक प्रौढ़ युवक दिखाई दिया। संसार में वह उसी रूप में आया था। उसका रंग गौर, मुंह सुंदर, बातें मीठी और रूप लुभावना था। वह साधु था। युवक साधु की ओर देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहा जाता था। पौर युवतियां इस साधु के चरणों में अपनी भक्ति भेंट करने के लिए उतावली हो उठी। उसी निर्मम निह स्प्रिय भाव से सबकी ओर देखता, आशीर्वाद देता और फिर भगवान का नाम जपने लगता। पृष्ठ संख्या 97। एक दिन साधु ध्यानावस्थ होकर बैठा था। पौर युवतियों का दल आज भी अपने पति पुत्र की मंगल कामना से साधु को प्रणाम कर रहा था। साधु आज चंचल था। उसने जोर से आंखें मूंद ली। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि वह जिसका ध्यान कर रहा था वह हृदय से निकल भागा। भगवान को हृदय में न पाकर साधु व्याकुल हो उठा। इधर उधर खोजने के लिए आंखें खोली और लो, उसके भगवान एक अपूर्व अभिनव वेश में सामने ही खड़े मिले। इस बार उन्होंने मोहिनी मूर्ति धारण की थी। सामने एक स्त्री थी, साधु तरुण इस भगवान के मनोहर रूप पर मुग्ध हो गया और चल पड़ा समाधि छोड़कर उसके पीछे पीछे। इसी समय में उसने देखा भगवान फिर एक बार हृदय में आ गए हैं। वह लौट पड़ा पर कहां, भगवान तो फिर उसी मोहिनी में ही समा गए। अंत में अनुसरण ही श्रेष्ठ पंथ जान पड़ा। उस युवती ने समझा आज भाग्य जगा जो महात्मा हमारे घर पधारे। युवती ने पूछा क्या सेवा करूं? प्रश्न चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। महात्मा ने कहा दो तीक्ष्ण कांटे ले आओ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। युवती ने तत्काल आज्ञा पालन की। साधु बोला देवी तुम्हें क्या मालूम है मैंने इन पापी आँखों को बंद करके तुम्हें देखा है। मेरी विभोर वासना तुम्हारे इसी मुख की ओर दौड़ पड़ी थी। उस समय तुम्हारे विमल हृदय रूपी आईने में मेरे कलुष निःश्वास की कुछ छाया पड़ी थी। लज्जा ने सहसा आकर वस्त्र की भांति रंगीन आवरण से तुम्हारे मुख को इन क्षुब्ध नयनों से बचाने के लिए ढक लिया था। वह मेरी मोहमयी चंचल लालसा काले भौरे की भांति तुम्हारे दृष्टि पथ के चारों ओर क्या गुनगुना रही थी। युवती कुछ समझ नहीं पाई, आश्चर्य से उस तरुण साधु की ओर ताकती रह गई। साधु ने कहा लो इन तीक्ष्ण कांटों से मेरी काली आंखें फोड़ दो। जिन आंखों की प्यास तुम्हारे लिए है वे तुम्हारे ही हो। उस समय संध्या सूर्य आकाश के प्रांत भाग में जा चुका था। युवती के ब्रीड़ा रक्त कपोलों पर संध्या की लाली पड़कर उसे और भी गाढ़ कर रही थी। साधु एक बार फिर चंचल हो उठा। जरा ठहरो, समझ नहीं रहा हूँ, जरा सोच लेने दो। संसार को लुप्त कर देने वाला यह चीर अंधकार क्या सदा यूं ही रहेगा? प्रश्न चिन्ह क्रमशः धीरे धीरे उसमें तुम्हारी यह मधुर मूर्ति पवित्र मुख और स्निग्ध आनत आँखें क्या फूट नहीं पड़ेंगी? प्रश्न चिन्ह इस समय जैसे देवी की प्रतिमा की भांति खड़ी हो, स्थिर गंभीर करुण नैनों से मेरे हृदय की ओर देख रही हो। वातायन से संध्या किरण आकर तुम्हारे ललाट देश पर पड़ी है। एक श्री रविंद्रनाथ की सूरदासेर प्रार्थना कविता से पृष्ठ संख्या 98। मेघों का आलोक तुम्हारे निबिड़ कृष्ण केश पाश पर विश्राम कर रहा है। तुम्हारी यह क्रांति रूपिणी मूर्ति अति अपूर्व साज से सज्जित होकर मेरी अनंत रात्रि में अनल रेखा के रूप में फूट उठेगी। तुम्हें घेर कर यह संध्या चीर काल तक जगी रहेगी और अपने आप तुम्हारे चारों ओर एक नया संसार उपस्थित होगा। यह वातायन ब्रैकेट में खिड़की, यह चंपा वृक्ष, वह दूर की सरयू ब्रैकेट में यमुना प्रश्न चिन्ह ब्रैकेट बंद की रेखा इस रात्रि दिवसहीन अंध हृदय में चीर काल तक देखी जाएगी। उस नए संसार में काल स्रोत न होगा, परिवर्तन भी न होगा। आज का यह दिन अनंत होकर चीरकाल के लिए जगा रहेगा। तुम में देखूंगा अपने देवता को, अपने हरि को। तुम्हारे आलोक में अपनी अनंत विभावरी ब्रैकेट में रात्रि ब्रैकेट बंद में जगा रहूंगा। इसके बाद युवती ने साधु की इच्छा पूरी की। उस पारस मणि के स्पर्श करते ही अवश्य कांटों से युवक कवि हो गया। कवि भक्त चक्षुष्मान अंधा हो गया, अंधा प्रज्ञा चक्षु। इधर गोलोक में पहली बार राधिका का हृदय प्रिय के लिए उत्कंठित हुआ। राधिका ने श्री कृष्ण से पूछा प्राणनाथ यह उत्कंठा कैसी? प्रश्न चिन्ह प्राणनाथ ने उत्तर दिया प्रिय वियोग अवश्यम भावी है। प्रिया की भरी आंखों ने पूछा उपाय? प्रश्न चिन्ह फिर प्रिय ने वंशी उठाकर दिखाया वह देखो उस अंध गायक को। उसके गानों में राधिका को उतरना पड़ेगा, कृष्ण को उतारना पड़ेगा, गोपियों को उतरना पड़ेगा, गोलोक कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। इस समय एकमात्र उपाय यह है कि भूलोक को गोलोक कर दिया जाए। कहते हैं उस दिन से राधा ने भारतवर्ष के घरों में आश्रय लिया और कृष्ण ने सर्वत्र। वह अंध गायक न वृद्ध हुआ न मरा, उसने जो कुछ गाया वह उसके लाख लाख गानों के रूप में फैल गया। लोग हंसते थे उसके गानों में, रोते थे उसके गानों में और सोते जागते थे उसके गानों में। तीन सूर सागर की भाषा के दो गुण। सूरदास तीन हैं, कवि और भक्त, केवल भक्त और कथा गायक। जहाँ प्रेम का प्रसंग आता है वहाँ सूरदास कवि और भक्त हैं। जहाँ आत्म निवेदन का वेग तीव्र रहता है वहाँ वे भक्त हैं और ब्रज की प्रेम लीला के बाहर वे सर्वत्र कथा गायक हैं। तीसरे सूरदास में कवि सूरदास का कोई चिन्ह नहीं दिखलाई देता पर भक्त सूरदास उनमें अनमने भाव से बैठे रहते हैं। इस तृतीय श्रेणी के सूरदास मानो अपने स्थान से च्युत हो गए हैं, अपने क्षेत्र से निर्वासित हो गए हैं। मानो ब्रज के बाहर की लीलाओं को गाते समय वे कहते कुछ और रहते हैं सोचते कुछ और। इन गानों के पीछे से एक अस्पष्ट ध्वनि सी निकलती रहती है, गा लो भाई यह भी भगवान की लीला है, अच्छा नहीं लगता तो क्या है, घी का लड्डू टेढ़ा भला। इसीलिए तीसरी श्रेणी के सूरदास की भाषा फीकी सी मालूम पड़ती है। पृष्ठ संख्या 99, वह व्याकरण की दृष्टि से उतनी ही शुद्ध हो सकती है जितनी पहली या दूसरी श्रेणी की, परंतु उनमें वह प्रवाह कहाँ। अब हम पहली और दूसरी श्रेणी की कविताओं की भाषा पर विचार करें। सूर सागर की भाषा पर लिखते समय क्या लिखा जाए, क्या यही कि सूरदास ने देखियो लिखा है या देखियो प्रश्न चिन्ह, या सूरदास की भाषा के अध्ययन से सौर सेनी और महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषाओं की पुरानी वास भूमि पर कोई प्रकाश पड़ता है या नहीं प्रश्न चिन्ह। अब तक विद्वानों का विचार रहा है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत महाराष्ट्र प्रांत की भाषा थी। अब अध्यापक मनमोहन घोष के रिसर्चों ने सिद्ध किया है कि वस्तुतः महाराष्ट्रीय मध्य प्रदेश की ही भाषा थी। उनका विश्वास है कि सूरदास आदि पुराने ब्रजभाषी कवियों की भाषा इस विषय पर और प्रकाश डाल सकती है। हम इन प्रश्नों की गुरुता समझते हैं, परंतु इस परिमिति क्षेत्र में हम इधर उधर दौड़ना अच्छा नहीं समझते, इसके लिए पर्याप्त समय की भी आवश्यकता है। तो सूर सागर की भाषा पर क्या विचार लिखा जाए प्रश्न चिन्ह। सच पूछा जाए तो जब तक सूर सागर का कोई सुसंपादित प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक उसके भाषा शास्त्रीय अंग पर विचार करना पानी पर लकीर खींचना है। जिन प्रतियों को लेकर यह अध्ययन आरंभ किया गया है वे इतनी अशुद्ध है कि जिसका कोई हदो हिसाब नहीं, इसीलिए हम सूर सागर की भाषा के काव्यांग पर ही विचार करना चाहते हैं। गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य का लेखक स्वतंत्र रहता है, पद्य का परतंत्र। गद्य लेखक चाहे जितने शब्दों को और चाहे जितनी मात्राओं को काम में ला सकता है, पर पद्य का लेखक कुछ अक्षरों और मात्राओं से अधिक या कम का व्यवहार नहीं कर सकता। गद्य का लेखक दुनियावी प्रयोजनों को लक्ष्य करके लिखता है, पर उसका पराजय उस स्थान पर है जहां वह उस प्रयोजन को प्रकट करने के लिए कम शब्दों का प्रयोग करके अस्पष्ट कर दे या अधिक शब्दों का प्रयोग करके निरर्थक। पद्य का लेखक यदि दुनियावी प्रयोजनों को ही लक्ष्य में रखता है ब्रैकेट में जैसे वैदिक और ज्योतिष आदि के श्लोक रचयिता ब्रैकेट बंद, तो वह एक व्यर्थ का बंधन स्वीकार करता है। परंतु अगर वह दुनियावी प्रयोजनों से ऊपर उठ जाए तो कवि हो जाता है। इसलिए कवि सीमाबद्ध होकर भी प्रयोजन की सीमा से कहीं दूर निकल जाता है। मतलब यह है कि जिसको लेकर दुनिया का कारोबार चल रहा था वह अकवि का लक्ष्य है, कवि का लक्ष्य उससे कहीं ऊपर है। औरों के लिए जो चीज नितांत निष्प्रयोजन है, कवि उसी मामूली सी चीज से एक असीम वस्तु की ओर संकेत करता है। अगर देखा जाए तो कुत्ते की पूंछ उसका सबसे अधिक अनावश्यक अंग है, परंतु कृतज्ञता के आनंद में विभोर कुत्ते में का कवि पुरुष अपना असीम आनंद इसी निष्प्रयोजन अंग को हिलाकर प्रकट करता है। आंखों का काम है देखना, दुनियावी प्रयोजनों के लिए पुतलियों को आंखों के कोने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पृष्ठ संख्या 100 पर इसी अनावश्यक क्रिया कटाक्षपात से कवि एक अवांग मनोगोचर प्रेम को प्रकट करता है। कहने का मतलब यह है कि कवि परतंत्र जरूर है, पर इस परतंत्रता का वह इतना अच्छा प्रयोग करता है कि संसार का अद्वितीय आदर भाजन हो गया है। कवि की भाषा का उत्कर्ष देखना हो तो देखना चाहिए कि वह कितने कम शब्दों में कितनी छोटी सीमा में बैठकर किस असीम की ओर इशारा कर सका है। काव्यार्थ प्रकाश के शब्दों में उसके वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ कितना अतिशायी हुआ है। काव्य की भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उसका चित्रमय होना। साधारण मनुष्य जिस बात को नाना भाव भंगियों व्याख्यानों और संकेतों का सहारा लेकर भी स्पष्ट नहीं कर पाता, कवि उसे बड़ी आसानी से एक साधारण सी भंगी में प्रकट कर देता है। सूरदास में ये दोनों गुण विद्यमान हैं। दूसरे गुण में तो सूरदास की समता संसार के कुछ ही कवि कर सकते हैं। पहली बात के लिए सूर सागर का एक पद उदाहरणार्थ लिया जाए। श्री कृष्ण ने किसी गोपी के घर माखन चुरा कर खाया है, वह उलाहना देने यशोदा के घर आई है, कहती है यशोदा तेरे लल्ला ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर को घर सूना जान कर ढूंढता ढांढता मेरे घर आया, किवाड़ खोल कर सींगे के पास खाट पर चढ़ गया, कुछ खाया, कुछ ढरकाया, कुछ दोस्तों को खिलाया, यह तो अच्छी बात नहीं है। एक ही दिन की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, रोज ही गोरस का नुकसान होता है। अद्भुत है तुम्हारा यह ठोटा, अनोखा तुमने पुत जन्माया है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवार पैठी मंदिर में दूध दही सब सखिनी खवायो, सीके काढ़ी खाट चढ़ी मोहन कछु खायो, कछु ले ढरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ठोटा कौने ढंग ढायो। सूर श्याम को हटकी न राखई, तू ही पूत अनोखो जायो। सारा पद सीधा सा उलाहना है, पर यह प्रतिवेशनी का द्वेष पूर्ण उलाहना नहीं है। यह प्रेम परायणा का उलाहना है, जिसमें हृदय का स्पर्श है। उलाहना देते समय उलाहना देने वाली की आँखों की एक स्निग्ध हंसी का चित्र खींच जाता है। वह अपना क्रोध प्रकट करने नहीं आई है, अपना प्यार जताने आई है। यह प्यार केवल एक शब्द से ध्वनित होता है, पूत अनोखौ जायो। पद के सारे शब्द प्रेम के विपरीत दिशा की ओर संकेत करते हैं, पर यह एक शब्द उन सबके भाव को बदल देने की आश्चर्यजनक शक्ति रखता है। साधारण आदमी के उलाहने में अन्य शब्द नितांत आवश्यक है, अनावश्यक है केवल यह अनोखौ शब्द। पर सूरदास के लिए इस अनावश्यक शब्द में ही सब कुछ है। इसी शब्द के आ जाने से गोपी के सारे कथन का अर्थ बदल जाता है। वह मानो कह रही है, कितना अच्छा तुम्हारा लाल है जो रोज ही हमारे घर के दही को धन्य कर जाता है। पृष्ठ संख्या 101। मगर यहाँ तो फिर भी सूरदास ने एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रायः वे कुछ भी नहीं कहते, केवल कुछ शब्दों को इस भांति रख देते हैं कि वाच्यार्थ कहीं का कहीं पड़ा रह जाता है और व्यंग्यार्थ न जाने कितनी दूर निकल जाता है। ब्रज घर घर यह बात चलावत, जसुमती कौ सुत करत अचगरी जमुना जल को भरन न पावत। श्याम बरन नटवर बपू काछे मुरली राग मलार बजावत। कुंडल छबी रवि किर नहु तई दुती मुकुट इंद्र धनुहु तई भावत। मानत काहु न करत अचगरी गागर धरी जल भुई धरकावत। सूर्य श्याम कौ मात पिता दो ऐसे ढंग आपू नहीं पढ़ावत। इस पद में शिकायत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, पर कहने की भंगी ऐसी है कि सारे निंदावाद का अर्थ हो जाता है प्रेम की चंचलता। श्याम बरन नटवर बपू काछे मुरली राग मलार बजावत। कुंडल छवि रवि किर नहु ती दुती मुकुट इंद्र धनुहु तेई भावत। चित्रमय भाषा के लिए तो सूर्य सागर की एक एक पंक्ति उदाहरण है। बिहरत है जमुना जल श्याम, राजत है दो बाहा जोरी दंपति अरु ब्रज बाम। नटवर वेश धरे ब्रज आवत, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल कुटिल अलक मुख पर छवि छावत। और भी अच्छे उदाहरण हैं। उमंगी चले दो नैन विशाल, सुनी सुनी यह संदेश श्याम घन सुमिरी तुम्हारे गुण गोपाल। आनन अरु उर्जनी के अंतर, जल धारा बाढ़ी तेही काल। मनुजुग जलज सुमेरु श्रृंग तेई, जाई मिले सम ससीही सनाल। देखी मैं लोचन चुवत अचेत, द्वार खड़ी इक टक मग जोवत। उरद श्वास न लेत ठुमुक ठुमुक धरिनी धर रेंगत, जननी देखी दिखावई इत्यादि। चार, सूरदास की विशेषताएं। आरंभ से ही हमारी इच्छा रही है कि इस अध्ययन में सूरदास के विशेष दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाए। अध्ययन के अंत में हम एक बार फिर कर देखना चाहते हैं कि सूरदास की विशेषताएं क्या क्या हैं। इस प्रसंग में एक बात यहाँ कह रखना अच्छा होगा, पिछले प्रकरणों में यह कहने का अवसर ही नहीं मिला था कि सूरदास वैष्णव पद रचयिता की दृष्टि से समस्त उत्तर पश्चिम भारत के अगुआ हैं। पृष्ठ संख्या 102। सूरदास ने जिस प्रकार के पद लिखे हैं, वे हिंदी जगत में बहुत नवीन न होते हुए भी एक विशेष नवीनता रखते हैं। नाथ और सहज पंथ के सिद्धांतों के पुराने पद उपलब्ध हुए हैं। श्री हर प्रसाद शास्त्री प्रभृति बंगाली पंडितों ने इन पदों को पुरानी बंगला में लिखित बतलाया है। श्री राहुल सांकृत्यायन इन्हें मगही हिंदी में लिखित बताते हैं। जो कुछ भी हो, ये पूर्व भारत से संबंध रखते हैं, इनमें संदेह नहीं। इन पदों में संसार की अस्थिरता दिखाकर वैराग्य भावना पर जोर दिया गया है। हिंदी संत कबीर और नानक जी के आदि ग्रंथ में रामानंद का एक पद भी संग्रहित है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुराने भक्तों के पद भी उनमें आए हैं, परंतु अब तक इस प्रकार के पदों का प्रयोग निर्गुण उपासक ही ही करते आ रहे थे। सगुण लीला के वर्णार्थ किस कवि ने इस प्रकार के पदों का प्रथम प्रयोग किया है, यह विवादास्पद है। अंग्रेज पंडित इस बात का श्रेय मैथिल कवि विद्यापति को देते हैं। विद्यापति के ही समसामयिक कवि चंडीदास ने भी इस प्रकार के पदों का व्यवहार किया है, पर इसकी प्राचीनता और भी पुरानी सिद्ध होती है। संस्कृत कवि जयदेव के गीत गोविंद के संबंध में कुछ विद्वानों का कहना है कि वह पहले उस युग के अपभ्रंश में लिखा गया था और पीछे से संस्कृत कर दिया गया। यह बात ठीक हो या नहीं, इतना निश्चित है कि जयदेव से भी पूर्ववर्ती कवि उमापति ने वैष्णव लीला गान करते समय इस प्रकार के पदों का प्रयोग किया था। मेरा जहाँ तक जाना हुआ है, उत्तर पश्चिम भारत में कृष्ण लीला वर्णन करने के लिए सूरदास ने ही पहले पहल इनका प्रयोग किया। जो पद निर्गुण उपासना को वहन करते आ रहे थे, उसे सगुण रस से सरस करना सूरदास का ही काम था। तो सूरदास की दूसरी विशेषता है उनकी बाल लीला का वर्णन। हिंदी के कितने ही लब्ध प्रतिष्ठ समालोचकों को संदेह है कि संसार के दूसरे कवि ने इस प्रकार की लीला का वर्णन किया है या नहीं। इन पंक्तियों का लेखक संसार की बात तो नहीं जानता, वह बहुत बड़ा है, पर इस बात में तो उसे भी संदेह ही है कि भारतवर्ष उत्तर भारतवर्ष के किसी वैष्णव कवि ने इतनी सफलता से इस पूर्णता के साथ बाल लीला का चित्रण किया होगा। 3. परंतु हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं, वह है उनका मातृ हृदय चित्रण। माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। 4. और मातृ हृदय के चित्रण में सूरदास को जो सफलता मिली है, वह उनकी प्रेम की विराट कल्पना के कारण है। सूरदास ने एक अलौकिक प्रेम की कल्पना की है, जो मिलन में 16 आना मिलन और वियोग में 16 आना वियोग के रूप में देखा जाता है। यह एक ही प्रेम यशोदा में एक रूप धारण कर गया है, राधिका में दूसरा, ग्वाल बालों में तीसरा, रुक्मणी में चौथा और गोपियों में और। पृष्ठ संख्या 103। यह प्रेम प्रकृति से मृदु है, पर है सारवान। यह कांचन पद्म धर्मी है, कालिदास के शब्दों में। ध्रुवम वपुः कांचन पद्म धर्मी यत मृदु प्रकृत्या च संसार मेव च। 5. यह बात पहले ही दिखाई गई है कि सूरदास वैष्णव अलंकारिकों के बंधन में नहीं बंधे। वे भागवत के 16 आना अनुयायी भी नहीं हुए। उनका अपना विशेष व्यक्तित्व सर्वत्र दिखाई देता है। 6. वल्लभाचार्य के शिष्य होकर भी सूरदास अन्य भक्तों की नाई बार बार गुरु का नाम लेकर जमुहाई नहीं लेते रहे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें लीला गान करने का उपदेश दिया और उन्होंने सच्चे शिष्य की भांति इस उपदेश को आजीवन के लिए सिर माथे उठा लिया। कथा है कि जब श्री सूरदास जी ने जान्यो की भगवदीक्षा ते अवसान समय है तो पारसोली गए। वहाँ यह जानकर कि पुष्टि मार्ग को जिहाज जाते है जा को जो लेनो होए सो लेऊ। भक्तगण उनके निकट एकत्र हुए, तब चतुर्भुज दास ने कहियो जो सूरदास जी ने बहुत भगवत जस वर्णन कियो, पर श्री आचार्य जी महाप्रभु को जस वर्णन नाही कियो। तब यह वचन सुनी कई सूरदास बोले, जो मैं तो सब श्री आचार्य जो महाप्रभु को ही जस वर्णन कियो है, देखूं तो न्यारो करूं परी तेरे साथ कहत हो। या भांति कही कई सूरदास जू ने एक पद कहियो, सो पद ब्रैकेट में राग विहा करो ब्रैकेट बंद, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जगी मांझी अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो होत निबेरो, सूर्य कहाँ कहीं दुविध आंध्रो बिना मोल को चेरो। सचमुच सूरदास ने कुछ भी गुरु के उपदेश से न्यारा करके नहीं देखा। 7. यह दिखाने के लिए पिछले प्रकरणों में कुछ प्रयत्न किया गया है कि सूरदास की दीनता आत्मसमर्पण वैराग्य भावना और पाप बोध के साथ ईसाई मर्मी संतों की इन भावनाओं की तुलना असंगत है, दोनों दो चीज हैं। 8. सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने एक इतः पूर्व काव्य में अप्रयुक्त भाषा को इतना सुंदर मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग प्रेम प्रतीति भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। 9. अंतिम विशेषता जिसे सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ने आत्मसात किया है, अनोखी सी है। यह विशेषता है सामान्य होना। ये महात्मा गण भारतीय जनता में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे कभी अलग व्यक्तित्व ही न रखते हो। 1. 84 वैष्णवों की वार्ता।